सुप्रभात। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की ओर से दूर शिक्षण प्रणाली के तहत कक्षा 9वीं हेतु काव्यखंड रसखान द्वारा रचित सवैये के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। रसखान का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। एक संपन्न परिवार में पैदा होने के कारण उनकी शिक्षा अच्छी और उच्च कोटि की हुई थी। उनकी यह विद्वता उनके काव्य में पूर्णतया परिलक्षित होती है। रसखान को फारसी, हिंदी एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। फारसी में उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके यह साबित कर दिया था। इसको देखकर इस बात का आभास होता है कि हिंदी और फारसी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। रसखान ने अपना बाल्य जीवन अपार सुख सुविधाओं में गुजारा होगा, लेकिन जिसने एक बार प्रभु की भक्ति का स्वाद चख लिया, उसे कोई और चीज भला कैसे भा सकती है। कृष्ण की मनमोहिनी छवि आँखों में ऐसी समाई कि वह भुलाए नहीं भूलती। मुरलीधर की मुरली को भला कौन भूल सकता है। वंशीधर की वंशी और मोर पंख तो उनकी पहचान है। एक नन्हा सा बालक भी यदि कृष्ण का स्वांग रचना चाहता है, रूप धारण करना चाहता है, तो इन दो चीजों को धारण कर कृष्ण बन जाता है। वह अपने को कृष्ण मानने लगता है। तीसरे सवैये में गोपियाँ कृष्ण के रंग में रंग कर कृष्णमय हो गई हैं। सोते जागते कृष्ण कृष्ण ही पुकारती रहती हैं, कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कृष्ण की एक चीज से उन्हें बहुत ईर्ष्या हो रही है। क्या है वह चीज? गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को परिलक्षित करता है रसखान जी का यह तीसरा सवैया। उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है। गोपियां स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, ताकि वे कृष्ण में समा जाएं, वे उनसे जुदा न हो सकें। गोपियां चाह कर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं। वे क्या कहती हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो ओही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी, अधरान धरोंगी। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति। गोपियां क्या कुछ करना चाहती हैं, अपने अतुलनीय प्रेम को दर्शा रही हैं। रसखान जी यही भाव प्रकट करना चाहते हैं इस तीसरे सवैये में। रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वे कृष्ण द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कृष्ण का रूप धारण कर सकती हैं। रूप धारण करेंगी मोर पखा, इसलिए वे कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर राखियों। मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना मुकुट, राखियों रखूंगी, गुंज की माला गरे पहरोंगी पहनूंगी। गुंज क्या है? एक जंगली पौधे का छोटा सा फल, नगण्य सा चीज जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन वे गरे गले में पहनने के लिए तैयार हैं। और क्या कहती हैं, पीताम्बर जो कृष्ण पहनते हैं पीला वस्त्र उसे भी धारण करने के लिए तैयार है। गोधन यानी गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालिन फिरोंगी घूमूंगी फिरूंगी, भाव तो अच्छा लगना वही जो कुछ, स्वांग रूप धारण करना। मुरलीधर कृष्ण का पर्यायवाची, अधरा ओंठों पर धरूंगी रखूंगी। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि वे कृष्ण के लिए कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, वे सब कुछ धारण करना चाहती हैं, पहनना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं जो कृष्ण करते थे। वे कृष्ण द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं, मगर इसके लिए सिर पर मोर मुकुट रखेंगी, गले में गुंज की माला पहनेंगी, पीताम्बर पहनेंगी और हाथों में लकुटी लाठी लेकर गायों के पीछे पीछे ग्वालन के संग वन में फिरेंगी। वह सब कुछ करेंगी जो कृष्ण मेरे रसखान यानी कृष्ण करते हैं, स्वांग उनका रूप धारण करेंगी, छद्म भेष धारण करेंगी, कृष्ण को पाने हेतु, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दिखाने हेतु। लेकिन अंतिम पंक्ति में क्या कहती हैं, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, सब कुछ करूंगी, सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन कृष्ण की मुरली से उन्हें ईर्ष्या हो रही है, कृष्ण की वंशी से उन्हें ईर्ष्या हो रही है। क्या ईर्ष्या हो रही है कि वे कहती हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं। एक सखी कहती है कि तुम कृष्ण का रूप धारण करो, तो एक सखी के कहने पर वह कृष्ण का रूप, दूसरी गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए तैयार है और वह कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर सब कुछ कर लूँगी, मोर पखा मोर मुकुट सिर पर रख लूँगी, गूंज की माला पहन लूँगी, पीताम्बर पहन लूँगी, हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने चली जाऊँगी, मगर मुझे कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली अपनी ओंठों से लगाने के लिए मत बोलना, मत कहना। क्यों? क्योंकि उसे उस मुरली से ईर्ष्या है, उसे लगता है किसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण हर वक्त मुरली को, वंशी को, बांसुरी को अपने ओंठों से लगाए रखते हैं। मुरली को गोपियों की अपेक्षा कृष्ण का सानिध्य अधिक प्राप्त है, इसलिए मुरली निर्जीव चीज है, बांसुरी निर्जीव चीज है, फिर भी अपने आराध्य से उसकी निकटता को देखकर गोपियों की ईर्ष्या, गोपियों को ईर्ष्या हो रही है। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने ओंठों से लगाए रहते हैं, इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती है। कहते हैं काठ की सौत भी औरत को अच्छी नहीं लगती है, सबसे सौतिया डाह यही है, सौतिया डाह। मुरली से गोपियों को, बांसुरी से गोपियों को सौतिया डाह है, वह निर्जीव चीज है, फिर भी गोपी उसे देखना नहीं चाहती है, उसे ईर्ष्या कर रही है, सौत की तरह व्यवहार कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ही कृष्ण का उसे सामीप्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। गोपियां सोचती हैं किसी मुरली के कारण वे कृष्ण का के प्यार से, प्रेम से, भक्ति से वंचित हो गई हैं। तो किस तरह गोपियों ने अपनी भक्ति को अपने आराध्य के प्रति दर्शाया है। गोपी कृष्ण से अनन्य प्रेम तथा भक्ति करती है, वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती है, इसलिए वह श्री कृष्ण जैसा दिखना चाहती है वह कृष्ण का स्वांग क्यों धरना चाहती है? क्योंकि वह कृष्ण से सच्ची भक्ति करती है, प्रेम करती है। वह इसलिए कृष्ण जैसा बन जाना चाहती है, उसके रंग में पूरी तरह से रंग जाना चाहती है। अंतिम पंक्ति जो है इस सवैया का मुख्य भाग है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगे, में अधरान का अर्थ है ओठों पर, अधरान ओठों पर नहीं, में यमक अलंकार है। यमक अलंकार हम लोग जानते हैं, जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन हर जगह पर उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अधरान, अधरा न दूसरी जगह भी है अधरान, लेकिन दोनों जगह इसका अर्थ अलग अलग है। एक जगह अधरान ओठों पर और दूसरी जगह पर अधरा न ओठों पर नहीं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यमक अलंकार है। काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। काव्यांश की रचना सवैया छंद में है और इसकी भाषा मनमोहिनी भाषा ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा की मधुरता ने इस सवैये में चार चांद लगा दिया है।